परिशिष्ट पांच, असमान संधियों का संशोधन, रिवीजन ऑफ द अनइक्वल ट्रिटीज। संधि संशोधन, ट्रिटी रिवीजन, पारिभाषिक शब्द का संबंध उस विस्तृत कूटनीतिक वार्ता से है जो 1868 के मेजी पुनःस्थापन के पश्चात जापानी सरकार द्वारा 1850 और 1860 के दशकों में की गई संधियों को संशोधित करने के लिए की गई थी। उस समय के जापानियों के लिए संधियों का संशोधन एक राष्ट्रीय लक्ष्य बन गया था। लगभग 25 वर्षों तक यह मुद्दा सरकार की कार्यसूची का भी मुख्य विषय रहा तथा घरेलू राजनीति में भी इस मुद्दे का प्रमुख स्थान रहा। तोकुगावा काल के अंतिम चरण में बर्बरों को निष्कासित करो, एक्सपेल द बर्बेरियंस अभियान के व्यवहारिक एवं भावनात्मक उत्तराधिकारी के रूप में इस मुद्दे ने न केवल विवेकपूर्ण विदेश विरोध को एक देशभक्तिपूर्ण विकल्प दिया, बल्कि समाज सुधारों को औचित्य एवं शासन के प्रभावशाली राजनीतिक आलोचक भी प्रदान किए। संधि प्रणाली की आधारशिला तोकुगावा शोगुनेत द्वारा अमेरिका, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ की गई आनसेई वाणिज्यिक संधियों के साथ रखी गई थी। 29 जुलाई 1858 को टाउनसेंड हैरिस ने शोगुनाई वार्ताकारों से संधिया करके न केवल पिछले समझौतों का विस्तार किया, बल्कि शिमोदा, नागासाकी तथा हाकोदाते जैसे बंदरगाहों जो पहले से खुले थे के साथ साथ कानागावा, निईगाता तथा हयोगो बंदरगाहों और एदो एवं ओसाका नगरों को भी खोल देने की व्यवस्था की। इन संधियों में सीमा शुल्क 5% कच्चे माल पर, 20% निर्मित वस्तुओं पर तथा 35% मद्य पेयों पर के अलावा विदेशियों पर उनके अपने कानूनों के आधार पर मुकदमे चलाए जाने के अधिकार का भी प्रावधान किया गया। इन संधियों में 1 जुलाई 1872 के बाद संशोधन की व्यवस्था थी, परंतु इस तिथि से पहले ही इनमें कई परिवर्तन कर दिए गए। विदेश विरोधी हिंसा फूट पड़ने के कारण शोगुनेत को अपने बचाव के लिए कई कदम उठाने पड़े। कई आयात करों में भी कमी कर दी गई और इसकी पराकाष्ठा 1866 के आयात कर सम्मेलन टैरिफ कन्वेंशन ऑफ 1866 के रूप में हुई। इस सम्मेलन में अधिकतर वस्तुओं पर आयात कर की सीमा 5% निर्धारित कर दी गई। विदेशी शक्तियों ने भी अस्पष्ट शब्दों में व्यक्त संधियों तथा सर्वप्रिय राष्ट्र अधिनियम मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का लाभ उठाते हुए अपने विशेषाधिकारों को दूसरे क्षेत्रों तक फैला दिया। समस्त जापान को विदेशी आप्रवास व व्यावहारिक गतिविधियों के लिए खोल देने की पश्चिम की इच्छा तथा जापान की देशेतर विशेषाधिकार एवं पारंपरिक सीमा कर समाप्त करने के लिए उपयोगों की तलाश के बातचीत को काफ़ी सक्रिय बना दिया गया। बातचीत के इन दौरों में राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय हित तथा नई सरकार के घरेलू दृष्टिकोण से संबंधित कई मुद्दे आपस में गुंथे हुए थे। पारंपरिक आयात करों से न केवल राष्ट्रीय संप्रभुता का अपमान हो रहा था, बल्कि अत्यंत आवश्यक राजस्व की भी हानि हो रही थी। इसके साथ साथ आयात करों के कम होने के कारण सरकार को न केवल अन्य करों पर निर्भर होना पड़ता था, बल्कि हस्तकला एवं उद्योग के संरक्षण विहीन हो जाने के कारण सरकार को घरेलू आलोचना का शिकार भी बनना पड़ा। देशेतरता की भी यही हालत थी। जापान की पारंपरिक संहिता के पर्याप्त न होने की स्थिति में द्वितीय न्यायाधिकार कंसुलर जुरिस्डिक्शन के द्वारा शायद संधि बंदरगाहों के मामलों का आसानी से संचालन किया जा सकता था, लेकिन पूर्वी न्याय की बर्बरता के बारे में प्रचलित यूरोपीय पूर्वाग्रहों के कारण जापानी विदेशियों से समान व्यावहारिक संबंधों की न के बराबर की अपेक्षा करते थे। विदेशी शक्तियों द्वारा जापानी प्रशासनिक नियमों को अस्वीकार करना जापानियों द्वारा राष्ट्रीय कमजोरी के रूप में भी देखा गया। इस प्रकार की भावना को उत्पन्न करने की घटनाओं में से 1879 की घटना प्रमुख है, जब हैजा होने के भय से सरकार ने जर्मनी के जहाज हेस्पेरिया को योकोहामा में संगरोध के लिए रोकने की कोशिश की, तो जर्मन दूत ने न केवल निर्देश मानने से इनकार कर दिया, बल्कि जहाज को युद्धपोत के संरक्षण में बंदरगाह तक लाया गया। इस पर जापानियों के लिए देशांतरता और बाकी सभी प्रकार के क्षेत्राधिकारों से मुक्ति में कोई अंतर नहीं रह गया था। जापानी परिप्रेक्ष्य में संधि संशोधन वार्ता को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण 1869 से 1874 का काल था। नई मेजी सरकार की प्रथम प्रतिक्रिया इन संधियों की 8 फरवरी 1868 की स्वीकृति से आरंभ हुई। वैसे तो इन संधियों को स्वीकार करने के अलावा जापान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसे एक तरह से विदेशी मामलों पर नियंत्रण पाने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने की दिशा में एक रचनात्मक कदम माना जाता है। एक घरेलू बयान में तो अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा का पालन किए जाने पर और भी अधिक जोर दिया गया। इस बयान में कहा गया कि संधियों का संशोधन बातचीत द्वारा, विदेशी संबंधों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार तथा संधियों का पालन देशी कानून की तरह किया जाना था। देश में वैध शासन लेजिटिमेट रूल स्थापित करके शाही अफसरों ने आरंभ में सोचा कि घरेलू स्थायित्व तो हासिल करके संधि संशोधन आरंभ आसानी से किया जा सकता था, लेकिन 1871 के इवाकुरा शिष्टमंडल तक जो भार उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया था, उसका स्वरूप अब दिखाई देने लगा था। अब इस धारणा को कि संधि संशोधन आंतरिक सुधारों पर निर्भर थे, आम स्वीकृति मिल चुकी थी। सुधारों एवं संशोधनों के द्वारा संबंध ने उस आधारभूत ढांचे को तैयार किया जिसके अंतर्गत संधि संशोधन प्रक्रिया का विकास होना था। संधि संशोधन का दूसरा चरण 1875 से 1879 का काल था। जापान के अधिकारों को एक ही झटके में पुनः प्राप्त करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री तोराशिमा मुनेनोरी ने आयात करों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। संप्रभुता की भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा कि असल में आयात कर की औसत दर केवल 3.4% थी और आयात दर स्वायत्तता के बदले में उन्होंने अधिक बंदरगाह खोल देने की पेशकश की। यद्यपि 1878 में अमेरिका इस प्रस्ताव से सहमत हो गया, परंतु ब्रिटेन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप संपूर्ण कोशिश नाकाम हो गई। इस प्रकार पुनः स्थापन के एक दशक बाद भी जापान संधियों की शर्तों के ऐसे भार को दबा पड़ा था जो अनसेई संधियों की शर्तों के भार से भी अधिक था। तीसरे चरण 1880 से 1887 के आरंभ में तेराशिमा के उत्तराधिकारी इनोउए काओरू ने नए प्रस्ताव पेश किए जो कम शब्दों में व्यक्त किए गए थे, किंतु उनका लक्ष्य आयात करों में वृद्धि तथा विदेशियों पर जापानी क्षेत्राधिकार स्थापित करना था। यद्यपि यह प्रस्ताव भी ब्रिटेन ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इनकी वजह से संधि राष्ट्रों के बीच 1882 में टोक्यो में प्रारंभिक वार्ता शुरू हुई। इस वार्ता ने 1886 में आरंभ हुए उस समझौता बातचीत का रास्ता तैयार किया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर सहमति की संभावना बनी। देशांतरता की समाप्ति पूरे देश को खोलने तथा विदेशियों को जापानियों के समान अधिकार देना, लेकिन जापान को पश्चिमी सिद्धांतों पर आधारित एक वैधानिक प्रणाली की स्थापना करनी थी और उसका अनुवाद विदेशियों के अध्ययन के लिए उपलब्ध करवाना था। इसके साथ साथ उन मिश्रित न्यायालयों की स्थापना भी करनी थी जिन्हें विदेशियों से संबंधित मुद्दों में प्राथमिकता प्राप्त हो। इनोउए के अनुसार यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, परंतु कई रूढ़िवादी ऐसी उपलब्धियों को विदेशी घुसपैठ का नकाब समझते थे। जब 1887 में प्रस्तावित संधि की विषय वस्तु का जनता को पता लगा तो व्यापक रूप से इसका विरोध हुआ और यह ढीले पड़ रहे जन अधिकार आंदोलन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। फलस्वरूप वार्ता स्थगित कर दी गई और इनोउए ने त्यागपत्र दे दिया। चौथा चरण 1889 से 1889 ओकुमा शिगेनोबू के विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर आरंभ हुआ। उन्होंने विदेशी शक्तियों से अलग अलग बात आरंभ की। शीघ्र ही जर्मनी और अमेरिका द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद जब ब्रिटेन से बातचीत चल रही थी तब जनता में विरोध की लहर फैल गई। ओकुमा ने इनोउए द्वारा तैयार की गई योजना की कुछ आपत्तिजनक बातों को हटा दिया था, किंतु जनता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। निहोन समाचार पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्तावित संधि की रूपरेखा ने विरोध को पुनः जागृत कर दिया। इस बार इस मुद्दे द्वारा दल आंदोलन और मंत्रिमंडल में विभाजन हो गया। वार्तालाप उस समय टूट गया जब ओकुमा को एक राष्ट्रवादी कट्टरपंथी ने आक्रमण करके घायल कर दिया। आखिरी चरण 1890 से 1897 के आरंभ में बातचीत फिर से शुरू हो गई, लेकिन अगस्त 1892 में मुतुसु मुनेमित्सु के विदेश मंत्री बनने तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इस समय तक सरकार फिर से नव स्थापित डायट में कट्टरपंथियों द्वारा तथा देशभक्ति की चल रही व्यापक लहर द्वारा अत्यधिक दबाव में आ चुकी थी। सरकार ने इस बढ़ते सामाजिक असंतोष का फायदा उठाया और दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया। उधर अब तक जापान ने सामाजिक एवं संस्था स्तर पर काफ़ी प्रगति कर ली थी। अब ब्रिटेन को भी पूर्वी एशिया में एक मित्र राष्ट्र की जरूरत थी। फलस्वरूप 1894 की एंग्लो जापानी वाणिज्यिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत देशांतरता को 5 वर्षों में समाप्त करने का फैसला किया गया। 1897 तक अधिकतर संधि राष्ट्रों के साथ इस प्रकार की संधियां की जा चुकी थी। 1911 में मुख्य राष्ट्रों के साथ आयात कर में स्वायत्तता के लिए नई संधियां की गई। इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित विश्व में जापान को भी बराबरी का दर्जा प्राप्त हो गया।